ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं मुकेश कुमार मिश्र। आरंभ में मुख्य समाचार शीर्षक। नेपाल को विकसित और संपन्न देश बनाने के लिए उत्साह और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने युवा पीढ़ी को किया आह्वान। आगामी 1 जनवरी को देश के सभी 7 प्रदेशों में विशेष कार्यक्रम आयोजित कर पर्यटन वर्ष 2020 का शुभारंभ करने की संस्कृति पर्यटन मंत्रालय की है तैयारी। और इसराइल के अटॉर्नी जनरल ने प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू पर लगाए रिश्वत लेने, धोखाधड़ी करने और भरोसा तोड़ने के आरोप। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि छोटे समय में ही नेपाल को आधुनिक, विकसित और संपन्न देश बनाया जाएगा। काठमांडू विश्वविद्यालय केयू के उपकुलपति भी रहे प्रधानमंत्री ओली ने आज धूलीखेल में केयू के 25वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश को कोई दूसरा नहीं बना देगा बल्कि इसे खुद नेपालियों को ही बनाना होगा। इस बात का जिक्र करते हुए कि सरकार स्तरीय शिक्षा देने के रास्ते पर आगे बढ़ा है, उन्होंने कहा कि नेपाल में उत्पादित चिकित्सा जनशक्ति विश्व स्तर की है। मौके पर उन्होंने युवा पीढ़ी से देश के विकास में उत्साह के साथ जुटने का आह्वान किया। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि संघीयता के विषय में जिन लोगों को जानकारी नहीं है उन्हीं लोगों के द्वारा संघीयता के मुद्दे को कमजोर बनाया जा रहा है। लोकतांत्रिक राष्ट्रीय मगर मोर्चा नेपाल द्वारा भक्तपुर की खरी पार्टी में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि प्रभावकारी ढंग से संघीयता का क्रियान्वयन न हो सकने के कारण संघीयता विरोधी सक्रिय हुए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि संघीयता को पूर्णता देने के लिए जातीय, वर्गीय और लैंगिक उत्पीड़न का अंत होना अभी भी बाकी है। कार्यक्रम में गृहमंत्री राम बहादुर थापा ने कहा कि दो बड़े कम्युनिस्ट पार्टी की एकता को मूर्त रूप देने के लिए नई संगठनात्मक संरचनाओं का गठन करने के लिए मजबूत शक्ति का निर्माण अभी बाकी है। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा ने सरकार पर न्यायालय और संचार क्षेत्रों के अधिकारों को क्रमशः छीनते जाने का आरोप लगाया। आज पोखरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सभापति देउवा ने कहा कि सरकार संवैधानिक परिषद को भी कठपुतली बनाना चाहती है। मौके पर वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि संवैधानिक आयोग पर शिकंजा कसने की सोच के साथ संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश लाया जा रहा है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल प्रसाद पांसकोटा ने कहा कि संचार माध्यमों का मौजूदा गंतव्य आर्थिक मजबूती होनी चाहिए। आज पोखरा में न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति और नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की शाखा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मंत्री बास्कोटा ने कहा कि संचार माध्यमों को आर्थिक रूप में सबल बनाने के लिए समानुपातिक विज्ञापन नीति लाई गई है। इस बात का जिक्र करते हुए कि मीडिया को और भी प्रभावकारी और व्यवस्थित करने के लिए विज्ञापन आयन, मीडिया काउंसिल विधेयक, आम संचार आयन और सूचना प्रविधि आयन को आगे बढ़ाया गया है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
14-15 बजारमा नयाँ कि छैन। नेपाल टेलिकम का विभिन्न सेवा का अफरहरू सस्तो, साह्रै सस्तोमा खरिद गर्न परेमा *14-15 ह्यास डायल गर्नु पर्ने रहेछ, त्यही भएर कण्ठ पारिरख्या
हो र दाई।
त्यति मात्र हो र भाइ, नेपाल टेलिकमले विभिन्न समयमा ल्याउने विभिन्न अफरको बारेमा थाहा पाउन पनि *14-15 ह्यास डायल गर्नुपर्ने रहेछ नि त।
14-15
मलाई पनि कण्ठै भयो दाई।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराय ने कहा कि सरकार सन 2020 की जनवरी 1 तारीख को सभी 7 प्रदेशों में विशेष कार्यक्रम के साथ पर्यटन वर्ष का शुभारंभ करने की तैयारी में है। पर्यटन वर्ष की तैयारी के संबंध में आज रिपोर्टर्स क्लब काठमांडू में बुलाए गए साक्षात्कार में मंत्री भट्टराय ने कहा कि कार्यक्रम में सहभागिता के लिए विभिन्न 40 देशों के पर्यटन मंत्रियों को निमंत्रण भेजा जा चुका है और अधिकांश ने सकारात्मक जवाब दिए हैं। उन्होंने बताया कि नेपाल में हर साल 1 करोड़ पर्यटकों को लाने के उद्देश्य के साथ अगले दशक को पर्यटन प्रवर्धन के दशक के रूप में विकसित करने की मंत्रालय की तैयारी है। नेपाली कांग्रेस के नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला ने कहा मार्गशीर्ष 14 को होने जा रहे उपचुनाव को हमारी पार्टी मिनी जनमत संग्रह के रूप में लिया है। आज मोरंग के विराटनगर में संचार कर्मियों के साथ बातचीत में नेता सिटौला ने कहा कि ये उपनिर्वाचन सरकार बनाने और गिराने की क्षमता भले ही न रखती हो, मगर इससे देश को सही रास्ते पर ले जाने में मदद जरूर मिलेगी। इस बात का जिक्र करते हुए कि महाधिवेशन के बाद नेपाली कांग्रेस और भी संगठित होगा, उन्होंने बताया कि उपचुनाव के बाद कांग्रेस महाधिवेशन की तैयारी में जुट जाएगी। निर्वाचन आयोग ने मार्गशीर्ष 14 को होने जा रहे उपचुनाव के लिए तैयारी की गई एकीकृत सुरक्षा योजना को परिमार्जन सहित पारित किया है। आयोग की आज की बैठक में सुरक्षा की समग्र स्थिति का आकलन कर उपचुनाव होने वाले मतदान स्थलों का सामान्य, संवेदनशील और अति संवेदनशील के रूप में वर्गीकरण करते हुए इसी आधार पर सुरक्षा की व्यवस्था करने का निर्णय किया है। ये बात सुरक्षा समिति के संयोजक निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पोटियाल ने दी। सरकार ने उपचुनाव के लिए 6,000 नेपाल प्रहरी और 10,000 की तादाद में सशस्त्र प्रहरी बल और नेपाली सेना परिचालित करने का निर्णय किया है। उच्च अदालत पाटन ने पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर मेहरा को पुलिस कस्टडी में भेजने के कारण संबंधी रिपोर्ट की मांग की है। मुख्य न्यायाधीश महकुल सुवेदी की पीठ ने आज उन्हें काठमांडू जिला अदालत द्वारा बयान के लिए हिरासत में भेजे होने के कारण संबंधी रिपोर्ट मांगी है। ये जानकारी उच्च अदालत पाटन के रजिस्ट्रार बाबूराम दहाल ने दी। इससे पूर्व कल गुरुवार को पूर्व सभामुख मेहरा ने हिरासत में भेजने के जिला अदालत के आदेश को गैरकानूनी बताते हुए साधारण तारीख पर ही बयान लिए जाने का आग्रह करते हुए याचिका दर्ज की थी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इसराइल के अटॉर्नी जनरल ने प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू पर 3 अलग अलग मामलों में रिश्वत लेने, धोखाधड़ी करने और भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया है। नेतन्याहू पर आरोप है कि उन्होंने धनी व्यापारियों से उपहार लिए और अपने पक्ष में ज्यादा प्रेस कवरेज हासिल करने के लिए पक्षपात किया। नेतन्याहू ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि वो विच हंट का शिकार हुए हैं। नेतन्याहू का कहना है कि उन्हें वामपंथी विरोधियों और मीडिया ने निशाना बनाया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और ऐसा करने के लिए वो कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि उन्हें पद से हटाने के लिए तख्ता पलट की साजिश की जा रही है। नेतन्याहू पर ये आरोप ऐसे वक्त में लगे हैं जब इसराइल में पहले से ही राजनीतिक गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। यहां अप्रैल और सितंबर में हुए 2 आम चुनाव बेनतीजा रहे थे। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर। नेपाल को विकसित और संपन्न देश बनाने के लिए उत्साह और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने युवा पीढ़ी को किया आह्वान। आगामी 1 जनवरी को देश के सभी 7 प्रदेशों में विशेष कार्यक्रम आयोजित कर पर्यटन वर्ष 2020 का शुभारंभ करने की संस्कृति पर्यटन मंत्रालय की है तैयारी। और इसराइल के अटॉर्नी जनरल ने प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू पर लगाए रिश्वत लेने, धोखाधड़ी करने और भरोसा तोड़ने के आरोप। इसी के साथ हिंदी समाचार से मुझे अनुमति दीजिए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार। शुभ रात्रि।